ओम शांति। कहा जाता है ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि की रचना की, लेकिन एक बार ब्रह्मा जी को ऐसा संकल्प आया था कि रचना कर लेना तो सहज है, लेकिन उसका संचालन करना थोड़ा कठिन कार्य आगे चलकर हो जाएगा। तो मेरे जैसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत थोड़े ऐसे आत्माएं चुनता हूं जो मेरे इस कार्य में, संचालन के कार्य में मददगार बन जाएंगे और मेरे समान बनकर, कंधे से कंधा लगाकर इस संचालन का कार्य आगे बढ़ाएंगे। हम सभी के समक्ष आज ऐसी दिव्य विभूति, दिव्य बुद्धि का वरदान जिन्हें प्राप्त हुआ है, प्रशासन कला में जो माहिर है, मिठास और नम्रता, शांति का गुण अगर देखना है या सीखना है तो आदरणीय गीता दीदी जी से ही सीख सकते हैं। ऐसी महान विभूति का हम यहाँ करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, गीता दीदी जी के बारे में जितना सुना है उतना कम है। हम बहुत छोटे थे, बहुत साल पहले की बात है, ज्ञान सरोवर में एकोमोडेशन लेने के लिए दीदी जी के पास पहुंचे और पहली बार जब दीदी जी से दो वाक्य सुने तभी दृढ़ संकल्प कर लिया था कि धीरजता, शांति और मिठास का गुण अगर लेना है तो दीदी जी से सीखना है और उनसे ये गुण उठाना है और आगे चलकर वही गुण हमको आज बहुत काम में आ रहा है जो दीदी जी से उठाया था। आदरणीय दीदी जी बहुत सुंदर विषय को लेकर आए हैं, निर्विघ्न स्थिति, निर्विघ्न सेवा। स्थिति अगर निर्विघ्न है तो ही सेवा में सफलता प्राप्त हो सकती है। गीता दीदी जी के बारे में कुछ परिचय देना चाहती हूँ। पिछले 45 वर्ष से इस ज्ञान मार्ग में आपने अपना जीवन समर्पित करने का सोच लिया था, 42 वर्ष से वो लक्ष्य पूरा कर लिया और जीवन को समर्पित कर दिया। प्रारंभ में 7 वर्ष सूरत, भरूच, अहमदाबाद, बड़ौदा में सेवाएं दी, उसके बाद 14 वर्ष भावनगर में, भावनगर सब जोन का संचालन किया, 17 वर्ष ज्ञान सरोवर में दादी जी का राइट हैंड बनकर आवास, निवास व आंतरिक प्रशासन में सेवाएं दी, 3 वर्ष से शांतिवन में सेवाएं दे रहे हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की आप हेडक्वार्टर की कोऑर्डिनेटर हैं, सीनियर राजयोग टीचर है और कन्याओं की ट्रेनिंग, भट्टी आदि ये सारे कार्यक्रम करने में आप बहुत माहिर है। आपके अंदर खास विशेषता है जो कन्याओं को बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे दीदी जी का बहुत सुंदर विषय है निर्विघ्न स्थिति, निर्विघ्न सेवा। आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। बाबा के मधुबन घर में प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने के साथ साथ हमारी दादियों से, दीदियों से, बड़ों से, ईश्वरीय परिवार से मिलने के लिए हम आते हैं और इनके साथ साथ बाबा की इस तपोभूमि, वरदान भूमि में हम तपस्या करने भी आते हैं। परिवार हमारा बेहद का है और बेहद का कारोबार चल रहा है। इस बेहद के कारोबार के बीच, क्योंकि सबका आना जाना, रहना, भोजन करना, देखना मिलना, इन सब कारोबार के बीच हमें शांति की स्थिति में भी रहना है और श्रेष्ठ स्मृति में भी रहना है, क्योंकि यहां वो माहौल है, वायुमंडल है, मौका है। कितना भी कारोबार है लेकिन पवित्र आत्माओं का कारोबार है, वाइब्रेशंस पवित्रता और तपस्या का है। इसलिए यहां हमें मौका है शांति में रहने का, स्वदर्शन करने का और बाबा से अपने आप को भरपूर करने का। हम सब जानते हैं इस वर्ष से बाबा का सतगुरु का पार्ट शुरू हो गए। ये पहली बार हुआ कि बाबा आए और आते ही वरदानी हस्तों से सबको मिले। ये सतगुरु के पार्ट की निशानी है। इस वर्ष हम ये भी देख रहे हैं कि पढ़ाई का विस्तार नहीं लेकिन वरदान के बोल है। आधे घंटे की मुलाकात में बहुत ही शक्तिशाली खजाना वरदानों का और शक्तियों का बाबा दे रहे हैं। संगम युग के अंतिम नाजुक समय के दौर से हम गुजर रहे हैं। बाबा का पार्ट सीमित हो रहा है। हमारी दादियां, हमारे बड़े सब अपनी संपूर्णता की मंजिल पर पहुंच रहे हैं। ऐसे वातावरण में और चारों ओर जो परिस्थितियां हम देखते हैं, ईश्वरीय परिवार बेहद का हो रहा है तो नेचुरली व्यक्तिगत मिलना पाना, रिफ्रेश होना, भरपूर होना, वो भी कम हो रहा है। और बाहर की दुनिया में आप देखते हैं कि परिवर्तन का माहौल है। राजनीति में भी परिवर्तन, धर्म क्षेत्र में भी हालात देख रहे हैं और लोगों के वृत्ति इरादे वो भी हम देख रहे हैं। ये सब वातावरण में अगर हमें अपनी अवस्था, आत्मस्थिति निर्विघ्न रखनी है, दो बात का अंतर समझेंगे। अवस्था बनाने की बात नहीं है, अब है बनी हुई अवस्था निर्विघ्न रखना। बनाने का समय काफी गुजर चुका है। जिन्होंने संगम युग में शुरू से ध्यान दिया पढ़ाई पर, पुरुषार्थ पर, समय सफल करने पर, सेवा में हड्डियां लगाने पर, वो तो महसूस कर रहे हैं जो जब से संगम युग में आए, टाइम की बात नहीं, कितने साल से हम बाबा के बने ज्ञान में चले वो बात नहीं, पर जब से चले तब से हमारे चलने की रफ्तार और विधि क्या रही, वो बात है कि अगर वो विधि अटेंशन की रही, प्योर ध्येय रहा बाबा का सच्चा पक्का बच्चा बनने का, और हमने समय संकल्प शक्ति सफल की, तो जरूर वे सब अनुभव कर रहे होंगे कि हमारी आंतरिक आत्मस्थिति ऊंची और शक्तिशाली बनती गई। मैंने ऐसे कई बाबा के बच्चे देखे जो पिछले सिर्फ 3 साल के बाबा के बने, पर क्वालिटी बने, हर प्रकार से लगन, सफल करना, पुरुषार्थ और सेवा के लिए जिम्मेवारी का पार्ट प्ले करना, इसलिए अवस्था बनने का आधार जो जब से बाबा का बना तब से लेकर जो बाबा कहते हैं वो समझने में, अभ्यास में लाने में, आचरण में लाने में, खुद सुनने समझने में, समझाने में जो बिल्कुल अटेंटिव रहे, उन सभी का अनुभव है कि अवस्था जरूर हमारी ऊंची मजबूत बनी। अब तक हमें बड़ों की छत्र छाया भी ज्यादा मिली, बाबा की पालना भी ज्यादा मिली, और साथ ही पुरुषार्थी भी अच्छे बाबा के क्वालिटी बच्चों का संग मिला, हम अपनी काफी अच्छी अवस्था बना सके। अब जो समय है कि जो अवस्था हमने बनाई श्रेष्ठ और शक्तिशाली, आत्मस्थिति ही निर्विघ्न रह सकती। साधारण कमजोर, क्योंकि दिन प्रतिदिन बातें तो बढ़ती जा रही, माना हिलाने वाली बातें बढ़ती जा रही, इसलिए साधारण स्थिति कमजोर स्थिति रही तो वो जल्दी विघ्न में आ जाती है। अभी भी जो भी समय बचा है, एक तो अब ये कोई पश्चाताप करने का समय नहीं, अब भी जो समय हमारे हाथ में है उसको सफल करने का, मैक्सिमम बन जाने का ले लेने का माना खुद को, क्योंकि ये समय दो चीज के लिए है, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए है और बाबा के प्रति समर्पित होकर अपने आप को निश्चिंत और सुरक्षित करने का है। इसलिए न पश्चाताप में समय खराब करना है, जो हो चुका वो गया, बिंदु लगाकर अभी भी जितना हम मैक्सिमम ले सकते हैं वो लेने का समय। ये चिंता करने का समय नहीं, क्या होगा क्या होगा, विनाश होगा, हलचल होगी, क्या होगा, नहीं, चिंता का समय नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बाबा से जुड़कर उनकी छत्र छाया में, श्रीमत ही छत्र छाया है, याद ही छत्र छाया है, सत्कर्म ही छत्र छाया है, ज्यादा से ज्यादा अब भी उस छत्र छाया के नीचे पहुंच जाने का ये समय है। ये दूसरों को देखने का, दूसरों को बदलने का या दूसरों को दूषित करने का समय नहीं। किसकी बनी नहीं बनी, उसकी बनी कितनी बनी, दूसरों को देखने का समय नहीं। अवस्था की दृष्टि से भी दूसरों की बनाओ, इनको पावरफुल बनाओ, इनको पक्का बनाओ, अभी वो सोचने का टाइम भी नहीं। स्वयं को बनाने का समय, अवस्था नहीं बन सकी, किसी को दूषित करने का समय नहीं कि मौका नहीं मिला, पालना नहीं मिले, ऐसे गाइड नहीं मिले, कुछ भी, ये दूसरों को दूषित करने का समय, ये समय स्व में स्थित होने का, स्वयं के प्रति फोकस होने का और ज्यादा से ज्यादा बाबा के प्रति समर्पित भाव से। प्रैक्टिकल तो हम हैं क्योंकि हम नियम मर्यादा में चलते हैं, बाबा की मत श्रीमत को ही मानते हैं, पर कई बार हम एकदम नियम से जीवन हमारी बन जाती है, पर एक भाव एहसास कि हर घड़ी हम बाबा के साथ, बाबा की छत्र छाया में, बाबा के संग संग हैं, ये समर्पण मैता के अनुभव में रहने का ये सब। और अगर हम सोचें तो अभी के समय अनुसार हमारी निर्विघ्न अवस्था, मैंने पहले ही बताया कि निर्विघ्न अवस्था उसी की हो सकती है जिनकी अवस्था श्रेष्ठ है और शक्तिशाली, वो ही निर्विघ्न हो सकता है। जो कमजोर है वो तो हिलेंगे, दूसरे प्रभाव में भी आएंगे, पर वर्तमान समय में बाबा ने ही ये कहा था कि श्रेष्ठ अवस्था, शक्तिशाली अवस्था ही वास्तव में संगम युग की सिद्धि है। हमें संगम युग में ज्ञान योग करके नियम धारणा में रह के सेवा में तन मन धन लगाकर अचीव क्या करना है, वो है शक्तिशाली श्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थिति। ये हमारी रियल अचीवमेंट है। दूसरा, ये श्रेष्ठ साधन है, शक्तिशाली स्थिति ही श्रेष्ठ साधन है परिस्थितियों के प्रभाव से, विशेषकर नकारात्मक प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखने। और तीसरी बात कि श्रेष्ठ शक्तिशाली निर्विघ्न स्थिति ही वो साधन है जिससे हम आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बन सकते हैं, दे सकते हैं। तो सेवा की दृष्टि से चाहे स्वस्थिति अचल अड़ोल बनाने की दृष्टि से, निर्विघ्न बनाने की दृष्टि से, ये बहुत जरूरी साधन है। ये हम सब जानते हैं कि लंबे समय से श्रीमत पर चलते रहना, नियमित पढ़ाई करना, योग अभ्यास करना, बाबा से प्यार करना और बाबा के कार्य में समय शक्ति तन मन धन सफल करना, यज्ञ के बड़े और निमित्त आत्माओं के साथ वफादारी से चलना और उसके रिटर्न में ज्यादा चाहना नहीं रखना, ज्यादा लेने की इच्छाएं नहीं रखना, उससे ही हमारी स्थिति बनती है, हमारी अवस्था बनती है। और हमें अनुभव है, हम सबको, क्योंकि हम सब बाबा के बहुत अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, तो एक तो हमारा लक्ष्य ये रहे कि हम व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार से चलें, लौकिक परिवार और कार्य क्षेत्र में हम ऐसे चलें और इस अलौकिक परिवार संगठन में भी हम ऐसे चलें, माना हमारे चलने की विधि ऐसी हो कि कम से कम विघ्न उत्पन्न हो। जैसे कईयों का चलना इस प्रकार से होता है शारीरिक रूप से भी कि वो कहीं न कहीं टकराते रहेंगे, किसी न किसी को ठोकर मारते रहेंगे। तो हमारे इस आध्यात्मिक जीवन में निर्विघ्न स्थिति रखनी है तो हमारा इस परिवार के बीच सेवा में, व्यक्तिगत जीवन में और लौकिक परिवार कार्य क्षेत्र में चलने की विधि ऐसी न्यारी प्यारी हो कि कम से कम विघ्न आए, माना विघ्न आए नहीं। कई बार हमारा अपना बोलना, चलना, सोचना, उठना, बैठना, मानना कहना इस प्रकार का होता है कि हम ही विघ्न को आमंत्रण देते। कम से कम जो आज बाबा ने कहा ना कि आप गिफ्ट दो, वेस्ट और अशुभ जो हमारी शक्ति को खर्च करते, अब ये हमें व्यक्तिगत स्वयं स्वयं को देखना है कि हमारे सोचने बोलने और करने में कहां वेस्ट हो रहा है। विघ्न जरूरी नहीं कि बाहर से ही आते हों, दूसरों से ही आते है ना, क्योंकि जब भी हम विघ्न की बात सोचते हैं, जिसको प्रॉब्लम समस्या पेपर जो भी कहो, ऐसा नहीं है कि दूसरों से ही आते हैं। खुद के भाव स्वभाव संस्कार, खुद की वृत्ति प्रवृत्ति से भी खुद को आते हैं। इसलिए हमारी चलने की विधि को ऐसी सरल शुद्ध हम बनाएं कि हमें विघ्न कम से कम आए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, विघ्न आते हैं तो उसको पार करने में या उसे खत्म करने में, या विघ्न के आने के बावजूद अपने आप को सेफ रखने में शक्ति तो खर्च होती ही है। इसलिए अगर सचमुच हमारा लक्ष्य है कि जब तक भगवान की और दादियों की छत्र छाया मिल रही है, यज्ञ की पालना जब तक मिल रही है, हम अपनी अवस्था बना ले, फिर कोई बनाने वाला हमें नहीं मिलेगा। जो अवस्था बनी हुई है उसी से हमें चलना होगा। तो अभी भी जो भी थोड़े दिन बचे हैं, हम अपनी स्थिति बना लें। सेवाएं हमने बहुत अच्छी की हैं, कर ली हैं, हमारी स्थिति से भी हमें संतुष्टता हो कि हम अपनी अवस्था जो पिछले वर्ष की सीजन में टोटल बाबा ने क्या अवस्था होनी चाहिए, हमारे पुरुषार्थ का संगम भर किए हुए पुरुषार्थ का अब क्या रिजल्ट होना चाहिए, एक स्थिति और स्वरूप के रूप में वही बाबा ने बताया, वही बाबा ने बताया। एक तो बाबा ने कहा था कि संतुष्ट, हरेक की अवस्था संतुष्ट होनी चाहिए, कोई कंप्लेन नहीं, कोई अभाव की महसूसता नहीं, हरेक अपने आप से बाबा से यज्ञ से साथियों से अपने सेवा से स्थान से जो है संतुष्ट स्थिति। दूसरा बाबा ने बार बार कहा हर्षित अवस्था, खुश खुश रहो, खुशी बांटो, खुशनुमा खुश किस्मत हर्षित, ये जो भी बातें कही माना हर्षित अवस्था। और जो संतुष्ट होगा वो ही हर्षित रह सकेगा, ये सीधा हिसाब। दूसरा तीसरी बात बाबा ने कही थी कि बेफिकर, माना बाबा में इतना निश्चय कि वो हर घड़ी मेरा साथी है और अपने श्रीमत पर किए हुए सत्कर्मों में विश्वास कि पुण्य सत्कर्म की पूंजी भी मेरे पास जमा है और तीसरा सेवा से कमाई हुई दुआओं में विश्वास कि ये सब मुझे समय पर मदद करने वाली चीज है। तो बेफिक्र हलचल में अचल स्थिति, ये भी बाबा ने कहा था, अचल अडोल स्थिति। और लास्ट बाबा की मुरली में बाबा ने हमें निर्विघ्न बनने की बात कही थी। चलन और चेहरे से सेवा करने वाली हमारी स्थिति, तो पिछली सीजन में बाबा ने टोटल अब समय अनुसार संगम के अंत में हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए यही बाबा ने बताया। क्या रिजल्ट हमारा आना चाहिए वो बाबा ने बताया, कैसे बनानी वो पुरुषार्थ का विस्तार नहीं, पर अब ये अवस्था होनी चाहिए। और इस वर्ष तो हम सब देख रहे हैं कि बाबा और वरदानी दृष्टि और शक्ति से हमें उसमें मजबूती से स्थित करने की कार्य बाबा कर रहा है। इसलिए निर्विघ्न सेवा ऑटोमेटिक होगी। बाबा ने बहुत पहले एक बार कहा था, कई भाई बहनों ने बाबा से पूछा था कि बाबा वैसे अवस्था हमारी अच्छी रहती पर सेवा में ही कुछ गड़बड़ होती है, अवस्था बिगड़ती। उस समय ही बाबा ने कहा था कि अलौकिक सेवा स्थिति को अलौकिक बनाने वाली, अगर अलौकिक सेवा में अलौकिक परिवार में अवस्था डिस्टर्ब होती है, विघ्न में आती है, माना अलौकिक सेवा करने की अलौकिक संगठन में चलने की विधि तुम्हें नहीं आती। इसलिए अगर हम स्वनिरीक्षण करते हैं तो समझ में आता है कि स्वयं की स्थिति में स्वयं को की तरफ से जो स्वयं को विघ्न आते हैं वो है अभी भी पुराने पन से चलना, पुराने स्वभाव संस्कार अंश वंश रूप में अभी भी हैं, और ज्ञान में चलते हुए भी बहुत सूक्ष्म चीज है कि ज्ञान में चलते हुए भी कई बार कई बातों में श्रीमत न स्वीकार कर अभी भी मनमत को ही महत्व देना या उसमें अड़े रहना, इससे खुद को ही विघ्न आते। अगर पुराने संस्कारों के अंश वंश जो स्वयं के अंदर है, हर एक जानते हैं किस में क्या है, खुद में। जो अंदर अंदर मानसिक तूफान लाते और मानसिक अपवित्रता जिससे होती है, उन स्वभाव संस्कारों के अंश वंश को खत्म करने की निरंतर जिगरी, लगन और पुरुषार्थ, भले वो किसी को ना दिखाई देते हों, किसी को ना डिस्टर्ब करते हों, इतने थोड़े से परसेंटेज में है, पर जो मेरी आंतरिक मनोस्थिति को बिगाड़ते हैं, तो हमें ये निरंतर लगन हो कि मुझे अंदर से संपूर्ण रूप से शुद्ध होना है, सतो प्रधान बनना है, बाबा जैसा बनना है। इस जिगरी लगन के सिवाय हम खुद के विघ्नों को खत्म नहीं कर सकते। जो रहा हुआ अंश वंश है कमजोरी का, इसलिए पिछले वर्ष लास्ट मुरली में जो दो काम बाबा ने दिए थे कि नेक्स्ट सीजन के लिए क्या तैयारी करके आएंगे, तो दो बातें बाबा ने बताई थी। एक अवस्था के हिसाब से बताई थी कि जो भी रही सही कमजोरी है उसे खत्म करके आना। बाबा ने उदाहरण भी दिया कि थोड़ा भी काम का, क्रोध का अंश भी बहुत बड़ी डिससर्विस करता है। पिछले वर्ष बाबा ने ये हमें वर्क दिया था लास्ट मुरली, निर्विघ्न अवस्था के हिसाब से, क्योंकि जैसे दूसरों को हम समझाते हैं ज्ञान कि दूसरे व्यक्ति परिस्थिति तनाव का कारण नहीं है, हमारा अपना चिंतन दृष्टिकोण ही तनाव का कारण है, ये चीज हमें स्वयं को भी सिखानी है कि विघ्न का कारण कोई व्यक्ति नहीं है, परिस्थितियां नहीं। हम इसलिए विघ्न में हिलते हैं, कमजोर होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम जागृत नहीं है स्थिति के लिए। हमारा अपना दृढ़ता हो कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी अवस्था हिलानी नहीं है, कमजोर नहीं करनी है, प्रभावित नेगेटिव बातों के प्रभाव में नहीं लानी, मुझे अपनी अवस्था में अंदर से न्यारा प्यारा ही रहना है। इस दृढ़ता और लगन के सिवाय हम अपनी स्थिति को अपने तरफ से निर्विघ्न नहीं रख सकते। और हम सब जानते हैं कि बार 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 अवस्था विघ्न में आना, ढीली होना, फिर मजबूत बनाना, ऊंचा उठना, फिर गिरना, फिर ऊंचा उठना, बनना और बिगड़ना, ये अल्टीमेट अवस्था को कमजोर ही बनाता है। इसलिए ये समय के अनुसार हमारा कुछ भी डिस्टर्ब होना, अवस्था बिगाड़ना भी एक प्रकार से वेस्ट है। खुद की अवस्था को बिगाड़ना भी व्यर्थ है, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य ही अवस्था बनाना है और हम किसी से भी कोई भी कारण से डिस्टर्ब रहते तो अल्टीमेट मुझे ही नुकसान है। इसलिए जितना देहभान से न्यारे रहेंगे, आत्मभिमानी स्थिति में जितना हम रहते, अपने असली शुद्ध सत्य पवित्र स्थिति में जितना हम रहते हैं, पुराने संस्कारों के अंश वंश को इमर्ज होने की मार्जिन नहीं मिलेगी। भाई अंश वंश है पर उसे फिर अंकुरित होने की मार्जिन नहीं मिलनी चाहिए। जरा भी देहाभिमान में आते हैं तो उससे मौका मिलता है। इसलिए बार बार फिर अंदर स्वयं के सत्य चैतन्य शुद्ध स्वरूप में रहने का हमें आनंद आना चाहिए, अभ्यास हो जाना चाहिए कि मुझे फिर इसमें ही स्थित रहना। तो स्वयं को स्वयं के विघ्नों से मुक्त रखना है तो सबसे सेफ्टी की स्थिति है आत्मभिमानी स्थिति। ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जितना हम बहिर्मुखी रहते हैं उतना हमें सब कुछ ज्यादा दिखाई देता है। हमें लोग ज्यादा दिखाई देंगे, उनके संस्कार ज्यादा दिखाई देंगे, उनकी बातें ज्यादा दिखाई देंगी, तो उतना ज्यादा प्रभाव हमारी स्थिति पर आएगा और उतनी अवस्था में अगर हलचल नहीं आती तो कम से कम शक्ति भी नहीं भरती। जो निमित्त आत्माएं हैं, चाहे हमारी निमित्त टीचर्स बहने हैं, निमित्त हमारे सीनियर ब्रदर्स है, इंचार्ज है, जोन इंचार्ज, जो भी हमारे जो निमित्त है, हो सकता है उनका रोल है कि हमें लोगों को सुनना होगा, समाधान देना होगा, मार्गदर्शन देना होगा, पर जिनका ये रोल है वो भी इन बातों को सार में लाए। बहुत ज्यादा विस्तार हम पसंद ना करें, सार में बता दो भाई क्या तकलीफ है और सार में इनका समाधान कि ये है। हम इसलिए लोगों की वृत्ति प्रवृत्ति के नकारात्मक प्रभाव से अपनी अवस्था को इसलिए हम बिगाड़ते हैं कि हम अभी तक हम डूबे नहीं हैं, मगन नहीं हुए हैं। बाबा से हम संपूर्ण रूप से सर्व संबंध से जुड़े नहीं, अभी भी हमारी बुद्धि बहिर्मुखी होने के कारण ज्यादा सब कुछ देखती है, सुनती है, जानती है, प्रभाव लेती है। इसलिए जितना बाबा में लवलीन रहेंगे, हर संबंध से बाबा से जुड़ेंगे, जो कुछ मुझे चाहिए मुझे बाबा से ही लेना है, ये अगर लक्ष्य रखते हैं तो हमें हम डिटैच रहेंगे एक दो से भी, और अनिवार्य मतलब अनावश्यक बातें हमारे मन बुद्धि में भरेगी नहीं, कचरा अंदर आएगा नहीं, व्यर्थ अंदर गया माना वो हलचल करेगा। हमें ये सारे व्यर्थ के रसों को खत्म करना ही होगा। मैं ज्ञान चिंतन भी करती रहूं, ज्ञानदान भी करती रहूं और व्यर्थ बातें भी करती रहूं, व्यर्थ में इंटरेस्ट भी लेती रहूं, इससे हम नहीं बन सकते, ये नहीं चल सकता है दोनों चीज से। भल आप सेवा करते रहेंगे, ज्ञान सुनाते रहेंगे, दूसरों के जीवन बनते भी रहेंगे, पर मेरी अवस्था नहीं बनेगी क्योंकि व्यर्थ साथ साथ चल रहा है। जब तक शुद्धि नहीं, शक्ति नहीं, स्थिरता नहीं, जरा भी इम्प्यूरिटी हलचल लाएगी, क्वालिटी डाउन होगी, शक्ति नहीं बनेगी। ये हमें स्थिति के हिसाब से भी स्वीकार करना होगा और प्रैक्टिकल अपने आप को ऐसा चलाना होगा हमें, तो हमारा समय देखने में, सुनने में, वर्णन करने में, जानने में वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, कुछ भी हमने जाना, सुना, देखा, बाबा ने हमें कहा है अभी हम यही काम करें शुभ भावना मनसा से। ईश्वरीय परिवार में भी हम एक दो को ये सहयोग दें, विश्व की आत्माओं को भी ये दान करें। ये अंतर में ना आए कि देखो आया ना रिजल्ट, संगम भर इसने मेरे को परेशान किया, अब ये रिजल्ट आया ना, अब उनकी ये दशा हुई ना, नहीं, हम इससे भी ऊपर चले जाएं। महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं ऐसा सोचती भी नहीं, करती तो नहीं है पर सोचती भी नहीं। शुभ भावना मनसा बाबा की याद की मदद। बाबा ने कहा था मनसा सेवा अवस्था भी बनाएगी, वातावरण भी शक्तिशाली बनाएगी और विश्व की आत्माओं की सेवा भी करेगी, तीनों रीति से उपयोगी बने। इसलिए मैं जितनी बाबा के संबंधों के प्यार अनुभव में रहूं उतना मुझे व्यक्ति कम दिखाई देंगे, उनके प्रभाव में मैं कम आऊंगी। और तीसरा परिस्थितियां, शारीरिक बीमारी की है, आर्थिक मुसीबत की है, प्राकृतिक आपदा की है, दुनियावी कोई भी परिस्थितियां हमारे सामने आती है, वो भी अवस्था को विघ्न में लाती है। क्योंकि निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएगी, निर्विघ्न का अर्थ ये है कि परिस्थिति होते हुए भी उसके प्रभाव में न आना। तो ये जो परिस्थितियां है ना, और हम सब जानते हैं, कहीं शरीर की बीमारियां, कहीं संबंधों के प्रॉब्लम्स, कहीं प्रकृति के, कहीं धन साधन के, कुछ भी परिस्थितियां हैं, उसमें हमें अपने आप को अचल, अडोल, स्थिर रखना है, तो एक तो मुझे हिम्मत रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये परिस्थितियां हमारे ही कोई कर्मी के अकाउंट से आती, किसी से नहीं आ रही, पर मेरे सामने आई, मीन्स मेरा कोई हिसाब किताब है, इसलिए वो मेरे सामने। भी बरसात एक खेत में पड़ा, मेरे खेत में नहीं पड़ा, पानी में बाजू का घर डूब गया, हमारा नहीं डूबा, कोई भी परिस्थिति, मतलब मेरे सामने आई, मीन्स मेरा कोई हिसाब किताब है, कुछ है लेन देन का, तो एक तो मुझे हिम्मत रखनी है कि ये बिगड़ कारण नहीं आई है, कोई कारण से आई, और मुझे शांति से, धीरज से, हिम्मत से, योग बल से इसको पार करना है। हमें धीरज रखनी ही होगी, जरूरी नहीं सत्य है तो तुरंत ही सफलता मिले, सत्य होते हुए भी समय पर ही फल आता है, और तब तक अचल रहना, अड़ोल रहना, हिम्मत रखना, योगयुक्त रखना, ये जरूरी है। कई बार हम समझते हैं ना कि मैं सत्य हूं, श्रीमत पर हूं, तो भी मेरे फेवर में क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है? पर नहीं, टाइम पीरियड भी इम्पोर्टेंट है, कहते हैं ना भी पकने पर फल अपने आप पेड़ से गिर जाता है, पर तब तक वो लगा रहेगा। इसी प्रकार हिसाब क्लियर हो जाने पर परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी, देखने में परिस्थिति है पर मूल कारण हिसाब किताब है। तो एक तो हिम्मत, धीरज, शांति, योग बल, और दूसरा कि बाबा को साथी बना देना, अंदर वो स्मृति मर्ज कर लेना कि बाबा मेरे साथ है, उनकी मदद जरूर मेरे साथ है। और तीसरा, उस परिस्थिति को पार करने के लिए प्रैक्टिकली श्रीमत अनुसार मुझे जो करना चाहिए वो करना, उस करने में लग जाए। कई बार क्या है, हम बाबा पर छोड़ देते हैं कि बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, पर मुझे जो करना चाहिए श्रीमत अनुसार उस परिस्थिति को पार करने में, खत्म करने में, उससे मुक्त होने के लिए मुझे जो करना चाहिए वो हम नहीं करते। इसलिए बाबा में विश्वास होते हुए भी हम सफल कई बार नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम अपना जो कर्तव्य है, प्रयास है, उस समस्या को मिटाने के लिए, उस परिस्थिति को पार करने के लिए वो नहीं करते, बैठ जाते नहीं। अगर ये तीनों चीजें मिलती हैं तो हम इसको सहज पार कर सकेंगे, या उसमें हम स्थिर रह सकेंगे। कई चीजें हमें बिल्कुल चुप होकर, हिम्मत से बाबा की मदद से अंदर अंदर चुपचाप चुकानी चाहिए, चुकानी होती है कई बार परिस्थितियां में, उसमें अधीर्य ना हो, दुखी ना हो, बाबा से विश्वास न टूटे रहे, अंदर अंदर वो स्थिर अवस्था में रह जाने से अपने आप धीरे धीरे वो तूफान पार हो जाएगा। जब अवस्था ऐसी बनेगी या बनाने का या उसमें रहने का लक्ष्य हम रखेंगे तो सेवा सेंटर यज्ञ अपने आप निर्विघ्न हो जाएगा। और यही हमारी दादियों को हमारे बड़ों को सबसे बड़ी मदद है। बाबा के खातिर यज्ञ के खातिर विश्व के खातिर हमें ये सहयोग देना ही है। इसलिए बीज हम हरेक ब्राह्मण है, हम हरेक ब्राह्मण है, बाबा के खातिर यज्ञ के खातिर विश्व कल्याण के खातिर हम अपना कुछ भी त्याग करने तैयार रहे। अभिमान छोड़े, जिद छोड़े, मनमत छोड़े, इच्छाएं छोड़े, बाबा के खातिर यज्ञ हमारा निर्विघ्न रहे, संगठन हमारा निर्विघ्न रहे और विश्व के आगे हम एक एग्जाम्पल बन सके, उसके खातिर हम स्वयं को बदले, ये बहुत जरूरी। तो ये है कुछ चिंतन इस विषय पर, आप और भी गहराई से सोचे और एडिशन करें। ओम शांति। हम इसी लक्ष्य से बाबा की याद का अभ्यास भी करेंगे। ओम शांति। स्वयं में एकाग्र रहते हुए बिल्कुल शांति से सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। स्वयं में मगर
भाइयों को भोजन के लिए प्रस्थान करना है।
मेरा पांच अभ्यास हम करेंगे। पहला अभ्यास मेरा स्वयं का लक्ष्य है। मुझे अपनी आत्मस्थिति बहुत श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनानी है। ब्राह्मण जन्म लेने का मकसद ही ये है कि मुझे आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठना है। और मैं जानती हूँ कि मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो मुझे दैहिक भौतिक सांसारिक कामनाएं सीमित करनी होगी। राइट साइड घूम जाइए। प्यारे बाप दादा से मेरा वादा है, वचन है प्रतिज्ञा है कि जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा ही बनकर दिखाऊंगी। बाबा की मुझ आत्मा के पीछे जो मेहनत है उसे मैं सफल करूंगी। बाबा की पालना का रिटर्न दूंगी। जितनी बाबा से लगन उतनी एक रस अचल अडोल अवस्था मैं बना सकूंगी। राइट साइड घूम जाइए। समस्त ईश्वरीय परिवार को मैं अपनी निर्विघ्न अवस्था का सहयोग देंगे। मेरा लक्ष्य मैं जिस भी सेंटर से जुड़ा हूँ वहाँ जो मेरा साथी ईश्वरीय परिवार है मैं रोल मॉडल बनकर दिखाऊंगा। अपनी ऊंची श्रेष्ठ शक्तिशाली रूहानी आत्मस्थिति का उदाहरण बनूंगी। मुझे कोई देखे, मुझे कोई फॉलो भी करें, वो लक्ष्य तक पहुंच जाए। बाबा जैसा बन जाए, राइट साइड घूम जाए, मेरे सामने सारा विश्व है। और मैं जानती हूँ कि इस अंधकार में मुझे दीपक बनना है। आदर्श बनना है। विश्व परिवार की बेहद भावना में रहते हुए बाबा से जो मिला है मुझे इन आत्माओं को देना है। विश्व कल्याणी पार्ट प्ले करना है। राइट साइड घूम जाइए। पांचवा अभ्यास, मुझे मनसा से भी निरंतर शक्तिशाली शुभ और शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने। मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मैं अपने जाने अनजाने अस्तित्व से के लिए शुभ हूँ, कल्याणकारी। बैठ जाए। स्वयं में खो जाए। इस परिवर्तनशील जगत में मैं स्वयं ही सत्य चैतन्य अविनाशी आत्मा चारों ओर हलचल है। मैं स्वयं अचल चारों ओर तत्व है। मैं स्वयं शक्ति आसपास जो कुछ दिखाई दे रहा है वो लौकिक है, मैं स्वयं अलौकिक दिव्य शक्ति चारों ओर अज्ञान अंधकार है, मैं स्वयं जगमगाती ज्योति हूँ। बाबा का ज्ञान प्रकाश मैं सबसे डिटैच हूँ। एक प्यारे बाप दादा से जुड़ी हुई हूँ। विचारों से भावों से बाबा से जुड़ी हुई प्यारे बाबा याद ही साथ का अनुभव कराती
आपकी स्मृति ही मुझ में समर्थि भरती है। बन जाती हूँ आप मुझे स्वीकार कर लेते हैं मेरे जिम्मेवार बन जाते निश्चिंत निर्भय और बाबा
संकल्प बाकी संपूर्ण हम बन जाए ये बाबा से जो वादे वही पूरे कर दिखाए।